ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही आज दोनों सदनों की बैठक अगले महीने की 10 तारीख तक स्थगित। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की साफ सफाई के कारण 15 और 17 फरवरी को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली पुलिस ने शबे बारात को लेकर यातायात परामर्श जारी किया। आज शाम से कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू। और आज विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबद्ध संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध के बीच पेश की गई। दोपहर 2 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट को लेकर विपक्ष में भारी शोर शराबा हुआ। शोर शराबी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस रिपोर्ट में असहमति नोट को शामिल करने की अनुमति देते हैं, जिसकी विपक्षी सदस्य मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने रिपोर्ट के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सदस्यों के हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से बार बार आग्रह किया कि वो सदन की कार्यसूची के अनुसार सदन को चलने दें। उधर राज्यसभा में आज सुबह सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संयुक्त समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सदन में पेश की। इस बीच विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। सभापति ने विरोध कर रहे सदस्यों को चेतावनी दी कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बारे में आपत्तियों और उससे संबंधित अन्य विचारों को हटाया नहीं गया है। बाद में उन्होंने थोड़ी देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि संयुक्त बैठकों में विपक्षी सदस्यों द्वारा असहमति विचारों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।
मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में कार्यवाही और असहमति नोट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किया और इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।
चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिखी। और ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है।
सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में किसी भी क्षेत्र के आवंटन में कटौती नहीं की है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सुश्री सीतारामन ने कहा कि बजट का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के अलावा विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि ये बजट बहुत कठिन समय और चुनौतियों के दौरान बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए बाजार में अधिक नकदी सुनिश्चित करने के लिए बजट में अल्पकालिक उधार में भारी कमी की गई है। महंगाई के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कल जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 में CPI सूचकांक 5.22% से गिरकर 4.31% पर आ गया है। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने निचले सदन में विधेयक पेश किया।
लोकसभा में पेश आयकर विधेयक 2025 आयकर अधिनियम 1961 की भाषा और संरचना को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य कानून को और अधिक सुलभ बनाना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है। इस विधेयक में टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को खास तौर पर कम करने की कोशिश की गई है। विधेयक को तैयार करने के दौरान सरकार ने करदाताओं, व्यवसायियों, उद्योग संघों और पेशेवर निकायों के साथ व्यापक परामर्श किया है। इसके अलावा लगभग 21,000 ऑनलाइन सुझावों पर विचार किया गया और उनकी प्रासंगिकता के अनुसार उन्हें शामिल किया गया। आयकर विधेयक 2025 एक सरल और स्पष्ट कर ढांचा प्रदान करने की दिशा में एक कारगर कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही आज दोनों सदनों की बैठक अगले महीने की 10 तारीख तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% उपस्थिति दर्ज की गई।
सत्र के दौरान हमने अच्छे वातावरण में चर्चा की है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे और 23 मिनट की सार्थक चर्चा हुई है। इसमें 173 मान्य सदस्यों ने बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस सत्र में हमारी प्रोडक्टिविटी लगभग 112% रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने आज विशेष बजट बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बजट पेश किया। एक रिपोर्ट।
बजट में शिक्षा क्षेत्र को 1,693 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,833 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही बागवानी विभाग को 393 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। नए वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने सफाई का बजट 800 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है। इस साल सफाई के लिए 4,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वहीं शिक्षा के मामले में निगम 1,531 प्राथमिक विद्यालय, 43 अनुदान प्राप्त विद्यालय और 809 मान्यता प्राप्त संस्थान चलाता है, जो 7,00,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में निगम 13 अस्पताल, 102 मातृ और शिशु कल्याण केंद्र, 36 शहरी स्वास्थ्य केंद्र तथा 31 मोबाइल डिस्पेंसरी संचालित करता है। प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और रोहिणी सीट से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली में आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली लागू करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवा खराब चल रही है और इस विषय पर उच्च न्यायालय ने भी कई बार चिंता व्यक्त की है। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जल्द लागू की जाएगी। संसद के बाहर आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 100 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान लागू हो जाएगा।
सबसे पहले तो 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करना है। दिल्ली के अंदर 3 कचरे के बड़े ढेर हैं, उसको भी लेवल 0 पर लेके आना भी हमारी प्राथमिकता है।
दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की साफ सफाई के वार्षिक कार्यक्रम के कारण इस महीने की 15 और 17 तारीख को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि जनकपुरी, विकासपुरी, वसुंधरा एनक्लेव सोसाइटी, न्यू अशोकनगर, CNCB ब्लॉक शालीमार बाग BPS, UNV ब्लॉक शालीमार बाग BPS और SD ब्लॉक पीतमपुरा जैसे कई क्षेत्रों में 15 तारीख को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं 17 तारीख को C4E ब्लॉक जनकपुरी, DG1 विकासपुरी, DG3 विकासपुरी, LSC E ब्लॉक विकासपुरी, 1024 पॉकेट CEWS फ्लैट मयूर विहार फेज 3, R ब्लॉक दिलशाद गार्डन जैसे कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारत मंडपम में आयोजित IIASDARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस में नेशनल बुक ट्रस्ट NBT इंडिया के स्टॉल का दौरा किया। IIAS का वार्षिक सम्मेलन 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS ब्रसेल्स बेल्जियम के सहयोग से किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने शबे बारात को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि आज शाम से ही कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू हो गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि नेताजी सुभाष मार्ग, SMP मार्ग, चर्च मिशन रोड, खारी बावली रोड, कुतुब रोड, महाराजा अग्रसेन मार्ग और छत्ता रेल चौक पर मार्ग परिवर्तन रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने का आग्रह किया है और उन क्षेत्रों से बचने को कहा है जहां शबे बारात का जुलूस निकलेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अकादमी ने वर्ष 2022 IRMS बैच के 26 भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। प्रशिक्षण में परिचालन, सिविल, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग सहित विभिन्न विभागों का गहन अवलोकन शामिल है, जिसमें ट्रैक इंजीनियरिंग, यातायात पूर्वानुमान, गैर किराया बॉक्स राजस्व और मल्टी मॉडल एकीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रेडियो कई लोगों के लिए एक शाश्वत जीवन रेखा रहा है जो लोगों की को सूचना प्रेरित और जोड़ता है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो लोगों को जोड़ता है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि आकाशवाणी लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बारे में कई कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आकाशवाणी 1936 से ही भारतीय प्रसारण का आधार रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का भी एक वीडियो साझा किया जो लोगों के साथ रेडियो के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज 7वां दिन है। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है। हर वर्ष लगने वाले सूरज कुंड मेले में दिल्ली NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल होते हैं। इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित लगभग 42 देशों के लगभग 600 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
7 फरवरी से शुरू हुए इस वार्षिक मेले में विभिन्न राज्यों के व्यंजन, देश विदेश के हस्तशिल्प उत्पाद और होम डेकोर, कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर और ग्रोसरी समेत कई तरह का सामान आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मेले में आए हुए आगंतुकों ने मेले से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस मेले तक जाने के लिए आगंतुक दिल्ली मेट्रो से जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें निकटतम मेट्रो स्टेशन बदरपुर जाना होगा। 23 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार तथा सांस्कृतिक समूह अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मेले के लिए आगंतुक टिकट मेला स्थल पर निर्धारित काउंटरों तथा दिल्ली मेट्रो के ऐप दिल्ली सारथी 2.0 से खरीद सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली में आज धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही आज दोनों सदनों की बैठक अगले महीने की 10 तारीख तक स्थगित। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की साफ सफाई के कारण 15 और 17 फरवरी को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली पुलिस ने शबे बारात को लेकर यातायात परामर्श जारी किया। आज शाम से कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू। और आज विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।